धवला पुस्तक छठवी लेक्चर नंबर 6। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम शुद्धात्मने नमः, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वच्छायाणं, नमो लोए सौवसाहूणं, तिहुवन शिरसे हरये भवभयगभादुनिगदेपणं, सिद्धे जीवठाणसमलिणगुणचूलियम् ओच्छम्। आचार्य श्री वीरसेन स्वामी रचित यह धवला नामक टीका है, जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबलि आचार्य। इसमें प्रथम खंड जो जीवस्थान नामक है, उसका ये चूलिका नामक प्रकरण चल रहा है, और अभी छठे पुस्तक के पृष्ठ संख्या 67 पर हम आ गए। 67 हमने ये नाम कर्म के सब नाम देख लिए, जिसको कहते हो 42 प्रकृतियां देखी। अभी उसमें से कुछ तो ग्रुप वाली प्रकृतियां हैं, तो उसमें से उसके भेद करके बताएंगे। जम तम गदि नाम कम्मम तम चौविहम, निरय गदि नामम, तिरिक्ख गदि नामम, मनुष्य गदि नामम, देव गदि नामम चेदी। जो गति नाम कर्म है वह चार प्रकार का है, नरक गति नाम कर्म, दीर्घ गति नाम कर्म, मनुष्य गति नाम कर्म और देव गति नाम कर्म। जिस कर्म के उदय से नारक भाव जीवों के होता है, यानी जीव के नारकी जैसे परिणाम होते हैं, उसको कहेंगे वो गति नाम कर्म। वह कर्म कारण में कार्य के उपचार से, कार्य क्या हो रहा है, नारक भाव हो रहा है, उसका कारण क्या है, गति नाम कर्म, तो उसको भी हम नरक गति कह देते हैं, इस नाम से कहलाता है। इसी प्रकार शेष गतियों का भी अर्थ कहना चाहिए। जैसे अभी हमारे मनुष्य गति नाम कर्म चल रहा है, तो हमारे भाव मनुष्य जैसे भाव हो रहे हैं। देखो तीरियन चौंके उस पर्याय में रहने वाले जीवों के भाव जो है, जो नेचुरली ऑब्जर्व जिसको कहेंगे, वो अलग अलग होते हैं। जैसे तीरियनचों में ऐसे ही खा लेते हैं मुख से, और फिर खुले में सोते हैं। मनुष्य कैसे घर बांध के रहेगा, खाना पका के खाएगा, कुटुंब पद्धति, ये जो कुछ विशेषताएं हैं, मनुष्य जैसे हमारे भाव है, और तीरियनचों के उनके अपने जैसे भाव है। जैसे बिल्ली है तो चूहा को पकड़कर खाने के उसके भाव है, मतलब गाय और वो घोड़े उनके अपने अपने अलग जुदे जुदे हैं। सीरियन जगत ये सामान्य से एक भाव कह दिया, मतलब उसमें भी जितने उसके भेद हो गए, उतने भावों के भी भेद हो गए। इसको गति नाम कर्म कह दिया। जम तम जादि नाम कम्मम तम पंचविहम, ए इंद्रिय जादि नाम कम्मम, बी इंद्रिय जादि नाम कम्मम, ती इंद्रिय जादि नाम कम्मम, चौर इंद्रिय जादि नाम कम्मम, पंच इंद्रिय जादि नाम कम्मम चेदी। जो जाति नाम कर्म है वह पांच प्रकार का है। एकेंद्रिय जाति नाम कर्म, इसको जाति कहते हैं, एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, ये सब जाति कहलाती है। द्विंद्रिय जाति नाम कर्म, ये तो कर्म की बात है, और जीवों को भी हम कहें एकेंद्रिय जाति वाले जीव है। तीन्द्रिय जाति नाम कर्म, चतुरिंद्रिय जाति नाम कर्म और पंचेंद्रिय जाति नाम कर्म, ये प के ऊपर बिंदी लगा लो, पंचेंद्रिय हुआ है। जिस कर्म के उदय से एकेंद्रिय जीवों की, एकेंद्रिय जीवों के साथ एकेंद्रिय भाव से सदृशता होती है। क्या कहते हैं, एकेंद्रिय पना है, वो सब में समान है। एक स्पर्शन इंद्रिय के द्वारा जो जानने का ज्ञान का उघाड़ है और जो अन्य अन्य बातें उनके जो समानता पाई जाती है, तो कहते हैं ये उस जाति से वो समानता पाई जाती है, सदृशता पाती है, पाई जाती है, वह एकेंद्रिय जाति नाम कर्म कहलाता है। देखो कल भी जाति की उन्होंने परिभाषा बताते हुए हमने देखा था पेज नंबर है 51 पृष्ठ निकालने पहली लाइन मिला, जीवों के सदृश परिणाम को जाति कहते हैं। यही बात यहां पर बता रहे कि सदृश परिणाम है ना, तो एकेंद्रिय जीवों के अन्य एकेंद्रियों जैसे सदृश परिणाम, उनके परिणामों में सदृशता पाई जाती है। एकेंद्रिय भाव से 51 पेज पर हमने उसके डेफिनेशन देखे, वह एकेंद्रिय जाति नाम कर्म कहलाता है। वह एकेंद्रिय जाति नाम कर्म भी अनेक प्रकार का है, क्यों, एकेंद्रियों के कितने भेद है, वनस्पति का एक भी है, वायु का एक भी, अग्नि का एक भी है, और वनस्पति कायिकों में भी अलग अलग वनस्पतियां हैं। तो कहते वो एकेंद्रिय जाति नाम कर्म भी अनेक प्रकार का, यहाँ तो मुख्य भेद हम गिना रहे हैं। वैसे तो 8 कर्म है तो उसके असंख्यात लोक प्रमाण उसके भेद है अलग अलग। यदि ऐसा न माना जाए तो जामुन, नीम, आम, निब्बू, कदम्ब, इमली, शाली, धान्य, जौ और गेहूं आदि जातियों का भेद नहीं हो सकता। पुस्तक लाई आपने 6 नंबर की अंदर है, पंडित जी के वहां से ले लो ऊपर, हाँ वही 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 नीली वाली ऊपर ऊपर रखे, हाँ पेज नंबर 68। यहाँ नाम कर्म के भेदों की अपनी चर्चा चल रही है और जाति नाम कर्मों की बात हो रही है। तो जाति नाम कर्म क्या बताता है कि जीवों के परिणाम सदृश होते हैं, एक दूसरे के साथ समान होते हैं, तो उसको जाति नाम कर्म कहते हैं। एकेंद्रीय जाति नाम कर्म जो एकेंद्रीय 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 उनके एकेंद्रियपना सब में है, एकेंद्रीय जो भाव है वो सब में समान सदृश पाया जाता है। मनुष्य गति नाम कर्म हो गया ना अपना, यहाँ जाति की बात चल रही है, वो गति की बात, देखो देखो गति की बात क्या है, उस गति के योग्य उसके भाव होना, चलेगे, पर यहाँ जाति की बात चल रही है। जाति की बात क्या, अभी मनुष्य क्या, अभी मनुष्य जाति नहीं है, पंचेंद्रिय ये जाति है, समझ में, ये इसमें डिफरेंस है। तो अभी हम देख रहे हैं कि एकेंद्रीय जाति की बात है, उसमें भी बहुत सारे भेद हो गए। अगर ऐसा नहीं मानेंगे तो जो अलग अलग प्रकार के वृक्ष देखने में आते हैं, यहाँ तो उधर ही नहीं है, जामुन है, नीम है, आम है, नींबू है, कदम्ब है, इमली, शाली, धान्य, जौ, गेहूं आदि जातियों का भेद नहीं हो सकता। ये भी इसमें भेद है, जुदे जुदे जिस कर्म के उदय से, अभी इंद्रिय जाति बताएंगे, यहाँ तो केवल वनस्पति की अलग अलग जुदी जुदी बात बताए, उसमें तो अग्नि की बात है, वायु की बात है, सबकी बात अलग अलग होगी। जिस कर्म के उदय से जीवों की द्विंद्रियत्व की अपेक्षा समान होती, समानता होती, यानी स्पर्शनेन्द्रिय और रसनेन्द्रिय द्वारा जानने का उनका क्षोभम है। बाकी अगर शरीर की रचना देखो, रंग देखो, तो जुदे जुदे है, कोई ईयर है, कोई शंख है, जुदे जुदे उसमें द्विंद्रिय पाए जाते हैं, वह द्विंद्रिय जाति नाम कर्म कहलाता है। वह भी अनेक प्रकार का है, मिला ना आपको, हाँ 68 में तीसरी लाइन पढ़ रही हूँ। अन्यथा यानी वो अनेक प्रकार अगर द्विंद्रिय जाति में नहीं मानेंगे तो द्विंद्रिय के भी अलग अलग प्रकार है, कैसे, शंख, मातृवाह, क्षुल्लक, वराटक यानी कौड़ी, अरिष्ठ, शुक्ति, सीप, गंडोला और कुक्षिकृमि, पेट में उत्पन्न होने वाला कीड़ा आदि जातियों का भेद नहीं बन सकता। अभी इसमें तो कितने नाम जो है हमको परिचित भी नहीं है उन नामों से, यानी इस अलग अलग द्विंदीय जाति में आने वाले जो अलग अलग जो जीव है उसकी बात कर रहे हैं। यानी वो ईयर टाइप के जो होते हैं ना, इल्ली जैसे, जो गांडोर वो सब उसमें ही आ जाएंगे, द्विंदीय में आ जाते हैं। अभी पेट की कृमि कहते हैं, कुक्षी कृमि, उसमें भी कितने वैरायटी है। मेडिकल में जाओ तो पता चलेगा, राउंड वर्म अलग है, टेप वर्म अलग है, हुक वर्म अलग है, पिन वर्म अलग है, अभी उसमें कितने वैरायटी होगी। तो उसकी अलग अलग सब जाति जुदी जुदी है, तो उतने भेद भी होंगे कर्मों के। जिस कर्म के उदय से जीवों की तीन्द्रिय भाव की अपेक्षा समानता होती है, वह तीन्द्रिय जाति नाम कर्म है, वह भी अनेक प्रकार का है। अन्यथा, यानी इससे हमें, इससे हमें ये पता चलता है कि ये तीन्द्रिय में कौन कौन से जीव आते हैं, द्विन्द्रिय में कौन से, उन्होंने कुछ उदाहरण यहाँ बताए हैं। अन्यथा कुंथु, कुंथु नाम का एक, कुंथु तो द्विन्द्रिय में बताते हैं, तीन इंद्रिय कुंथु, और वो अनुंदरी, वो मेरे ख्याल से अनुंदरी द्विन्द्रिय में बताते, जीवकांड में अनुंदरी ऐसा कुछ नाम आता है, ठीक है। कुंथु ये तीन इंद्रिय, मत्कुण, मत्कुण यानी खटमल, अब क्या कहते हैं गुजराती में, माकड़, माकड़। जू ये बाल में होती, वो बिच्छू, गोमी, गोमी ने गोम, कान खजूर हो क्या कह रहे, इंद्रगोप और पिपीली का यानी चीटी, अभी चीटी चीटे ये सब उसमें सब ले जाएगा। आदि जातियों का भेद हो नहीं सकता, ये तीन्द्रियों की वैरायटी है। पेज नंबर 68 है, पहले पैराग्राफ के नीचे से छठी लाइन चल रही है। जिस कर्म के उदय से जीवों की चतुरिंद्रिय भाव की अपेक्षा समानता होती है, जाति नाम कर्म का अर्थ क्या है, उसके उदय में जीवों में सदृशता पाई जाती है, जीवों के भाव में। ये चतुरिंद्रिय, चतुरिंद्रिय आपस में समान है, कौन से, चतुरिंद्रिय पना की अपेक्षा, चार इंद्रियों के द्वारा जानने रूप उनका सूक्ष्म चल रहा है। वह चतुरिंद्रिय जाति नाम कर्म है, वह कर्म अनेक प्रकार का है। अन्यथा, अभी चतुरिंद्रिय के कुछ उदाहरण बताए, भ्रमर, मधुकर, मधुकर यानी वो मधमाशी, मधुकर भौरा, भौरा भूंगा, भूंगा, हाँ बरोबर, मधुकर यानी भूंगा, भ्रमर, भ्रमर को भी भूंगा कहते ना, वो मधमाशी नहीं, भ्रमर, मधुकर। अभी मक्खी भी बताए, उसमें तो अलग अलग मक्खियां सब आ जाएगी, शायद भ्रमर अलग होगा और मध के भूंगा अलग, भूंगा ही बरोबर, वो कमल में जो उसमें से रहता है वो अलग टाइप का कुछ भूंगे होते होंगे, उसमें भी वैरायटी होती। शलभ, हाँ शलभ ये टोल ना, टोल, ये टोल नाक तोड़ा सब उसी में आ जाएगी, वो वही वैरायटी होती, समझ रहे ना, टोल नहीं समझ रहे, अरे खेतों में आते ना एकदम वो, तो तीड़, तीड़, अच्छा अब वहां भी तीड़ कहते। पतंग, पहले के, अभी तो आजकल सुना नहीं, मैं पहले बहुत ऐसे वो एक साथ लाखों करोड़ों आते थे, पूरा खेत के खेत खा डालते थे, टोलधाड़ कहते उसको, टोलधाड़। हाँ पतंग, पतंग अभी समझते हैं ना, अभी ये बाहर देखेंगे आप, ये पीले फूल है ना, तो कितने सैकड़ों पतंग ऐसे पतले पंख होते हैं, उनके इतना लंबा कीड़ा होता है, हाँ पतंगे पर, दंश मशक मच्छर और मक्खी आदि जातियों का भेद नहीं हो सकता। ये चतुरिंद्रिय के कुछ यहाँ बताए उन्होंने उदाहरण। जिस कर्म के उदय से जीवों की पंचेंद्रिय पने की अपेक्षा समानता होती है वह पंचेंद्रिय जाति नाम कर्म है। वह कर्म अनेक प्रकार का है, यानी पंचेंद्रिय पांचों इंद्रियों से जानने रूप सूक्ष्म वहां पाया जाता है। वह अनेक प्रकार अन्यथा देव नारकी सिंह अश्व हत्ती हस्ती वृक व्याघ्र चीता आदि जातियों का भेद बन नहीं सकता। अभी मनुष्य भी ले लो उसमें और भी जितने मालूम है सब ऐड कर दो उसके अंदर। जाति नाम कर्म हो गया गति और जाति। पेज नंबर 60 एक मिनट ऊपर पढ़ते एवं संते नहीं समाधान कहाँ है एक एक मिनट ऊपर ऊपर इसमें से पढ़ेंगे प्राकृत में से पेज नंबर 60। इनका प्रश्न है वो तेजस का एक नाम कर्म बताया है ऊपर से 1 2 3 4 5 लाइन सेंटर से यदि आदव नाम कम्म न हो ज यही प्रश्न है ना तो सूर्यमंडले नहीं वो हो गया वो तो हो गया उसके बाद सोष्ण प्रकाश आतप आतप किसको तो उष्णता सहित प्रताप को आतप कहते हैं। हाँ नीचे से पांचवी लाइन एवं संते ऐसा होने पर तेव कायम निवी आदावस्य उदव पावे दीप्ति छे शंकाकार वही कहता है तेजस का एक जीव में भी आतप कर्म का उदय प्राप्त होता है न तथ तन उन्न पभाए तेहु काय नाम कमोदयेन उपन्नाय यानी तेजस का एक नाम कर्म के उदय से उत्पन्न वो स्थावर के भेद है तेजस का एक पांच स्थावर यानी स्थावर काय कहते हैं ना पृथ्वी का एक अग्नि का एक वायु का एक वनस्पति का एक तेजस का एक ये नाम कर्म है ना त्रस और स्थर स्थावर के वो भेद है तो उस भेद में उसके उदय में अग्नि का एक तेजस का एक नहीं अग्नि का एक स्थावर का भेद है क्योंकि ये हाँ उसको अतप नहीं कहते वो स्थावर नाम कर्म है ना तेजस का एक नाम का उससे सयल पहाविना भावी उन्नतता भावे न साधम्मा भावाद अभावाद वो जो उष्ण प्रभा है तो पहले ऊपर कहा बताया कि उष्णता सहित प्रकाश को उसमें वो सभी प्रकार के प्रभाव नहीं पाए जाते ऐसा उष्णता उसमें नहीं है वो तो उसके उस तेजस काय के उस नाम कर्म के उदय में वैसा ही शरीर पाया जाता है उसका वो काय का ही भेद है उसके वो काया ही उस टाइप की है उनकी जैसे वायु कायिक में उनकी काया ही अलग है जल कायिक में उनकी काया ही वो जल की है इस तरह से अग्नि कायिक की वो काया ही वैसा है तेजस कायिक नाम कर्म का उदय बताए हम अभी 68 पेज पर हैं फिर दोबारा आना अपने पेज पर 68 अभी गति जाति फिर शरीर नाम कर्म है पहले हमने 42 नाम देखे थे उसमें पिंड अपिंड प्रकृति थी कुछ सिंगल थी और कुछ ग्रुप वाली थी गति 4 प्रकार की जाति 5 प्रकार की अभी शरीर नाम कर्म 5 प्रकार का है जो शरीर 5 प्रकार के है उसमें वो नाम कर्म जोड़ देना तो कौन कौन से शरीर मालूम है आपको मालूम है औदारिक शरीर मनुष्य वो काय योग है, वैक्रेश शरीर, तेजस शरीर, कारमा, और मुनियों के आहार शरीर होता है। ये पांच प्रकार के हैं ना, अभी इसकी बात बताएंगे। जम तम शरीर नाम कम्मम तम पंचविहम, ओरालिय शरीर नामम, वेयुव्य शरीर नामम, आहार शरीर नामम, तेया शरीर नामम, कम्मय शरीर नामम चेदी। जो शरीर नाम कर्म है वह पांच प्रकार का है, औदारिक शरीर नाम कर्म, वैक्रिक शरीर नाम कर्म, आहारक शरीर नाम कर्म, तेजस शरीर नाम कर्म और कारमान शरीर नाम कर्म। ये सब कर्म के भेद है। मनीषा बेन, हमने ये प्रश्न बहुत बार पूछा है, औदारिक शरीर नाम कर्म, वैक्रिक शरीर नाम कर्म, आहारक शरीर नाम कर्म कौन सी वर्गणा से बना है? आपको वर्गणा का अभ्यास है कि नहीं है? नहीं, कोई बात नहीं। अरे कारमान वर्गणा, नाम कर्म की बात चल रही है। मुझे लगा वो फंस जाएगी, तो ये आप सब फंस गए। शरीर बना है, औदारिक शरीर बना है आहार वर्गणा से। औदारिक, वैक्रिक और आहारक शरीर, शरीर वो आहार वर्गणा से बना है, पर हम नाम कर्म की बात पूछ रहे हैं। शरीर नाम कर्म किससे बना है? आज एकदम ग्रुप में सब कुछ शामिल हो गए। मुझे लगा ये बीच में बोल रहे कुछ गड़बड़ करेंगे, इसलिए मनीषा भी। शोभाबेन, ख्याल में आई बात? देख, ये सारे नाम कर्म के भेद चल रहे हैं ना। नाम कर्म है, कोई भी कर्म है, कारमान वर्गना से बना है, उसका रॉ मटेरियल कारमान वर्गना है। और ये हमारे शरीर जो बनते हैं उसमें वो भले निमित्त है, शरीर जो बनना है वो आहार वर्गना से बना। तो ये पांच नाम हमने देखे। देखो, इनके हमने पहले शरीर नाम कर्म की डेफिनेशन देखी थी। पेज नंबर 52 पर होगा। कहाँ पर? वो बंधन नहीं, शरीर 52 पेज पर सेकंड पैराग्राफ। देखो, जिस कर्म के उदय से, निकालो पेज 52 पर उसकी डेफिनेशन है ना। कि जिस कर्म के उदय से आहार वर्गणा के पुद्गल स्कंद, या आहार वर्गणा के स्कंद किसके लिए? औदारिक, वैक्रिक और आहारक के लिए। तेजस वर्गणा के पुद्गल स्कंद और कारमण वर्गणा के पुद्गल स्कंद, इनमें से पांच शरीर अलग अलग बनेंगे ना। शरीर योग्य परिणामों के द्वारा परिणत होते हुए, यानी ये स्कंद है वो शरीर रूप परिणमते हैं। जीव के साथ संबंध होते हैं, संबद्ध होते हैं, उस कर्म स्कंद की शरीर यह संज्ञा है। उस कर्म को शरीर कहते हैं, इसलिए उसको भी औदारिक शरीर नाम कर्म कह दिया, वैक्रिक शरीर नाम कर्म कह दिया। तो यही अभी हम यहाँ पढ़ेंगे। अब आना 69 पेज पर। जिस कर्म के उदय से जीव के द्वारा अधिष्ठित देश में, देखो क्या कहते हैं, जहाँ जीव रुका है उसी देश में, उसी आकाश प्रदेश में स्थित आहार वर्गणा के पुद्गल स्कंद। देखो, ये जो आहार वर्गणा जीव ग्रहण करता है, कहते कर्म हो या नोकर्म हो, शरीर के परमाणु हो, कहीं बाहर से खींचे नहीं आते। बचपन में हम ऐसा समझते ना, ये आना, कर्म का आना और निकल जाना, ऐसा ऐसा कहीं बाहर से नहीं आते। इतना जीव है तो उतना ही, जितना उस जीव ने क्षेत्र रोका है उसी क्षेत्र में जो पुद्गल स्कंद है, कौन से? वो आहार वर्गणा के, वो शरीर रूप परिणत हो जाते। क्यों? क्योंकि वहां पर वो जो नाम कर्म का उदय है ना, उसके निमित्त से वहां आहार वर्गणा है वो शरीर रूप परिणमित हो जाती है। बाहर से कहीं कोई खींचता नहीं है। फिर से देखो, जिस कर्म के उद्देश्य, अभी जीव तो ऑलरेडी कर्म के संयुक्त था, अब वो मनुष्य गति चालू हो गई, उसके मनुष्य में आया है तो उसके औदारिक शरीर नाम कर्म का उदय चालू हो जाएगा। ये विग्रह गति के बाद जहाँ पहुंच जाता है माँ के गर्भ के, वहाँ जो उसका जन्म लेना है तो वहाँ जीव पहुंच जाता है, तो वो जीव का जितने प्रदेश ही है ना उस, तो उतने प्रदेशों में जिस कर्म के उदय से जीव के द्वारा अधिष्ठित देश में स्थित जो उसके आत्म प्रदेशों ने जितना क्षेत्र व्यापा है, वहीं पर जो पुद्गल है, वहां के आहार वर्गणा के पुद्गल स्कंध अब शरीर रूप परिणमते हुए, हमने पर्याप्ति में देखा था ना, वो खल रूप रस रूप परिणम आता है, फिर उसमें से खल में से खल अवयव, रस में से रस अवयव वगैरह होते हैं। तो कहते हैं रस, रुधिर, मांस, मेदा, अस्थि, मज्जा और शुक्र स्वभाव वाले औदारिक शरीर के स्वरूप से परिणत होते हैं। यह औदारिक शरीर का वर्णन किया, उस कर्म की औदारिक शरीर यह संज्ञा है। समझ में आई ये डेफिनेशन? जरा अटपटी लगती है परंतु उसका एक एक शब्द महत्व का है। यानी जीव कहीं से आया है, जन्म लिया उसने, यहां अभी शरीर धारण करना है, वहां कोई रेडीमेड शरीर नहीं है। जीव तो केवल कर्म और तेजस और कार्मण शरीर के साथ आया है। अब उसका उस जाति जो गति गजाति उसके भी उदय चालू हो जाते हैं और फिर औदारिक शरीर नाम कर्म का भी उदय शुरू हुआ। तो जितना जीव मान लेते इतना प्रदेश है उसके, इतना प्रदेश ही है, तो उसी क्षेत्र में जो स्थित जो आहार वर्गणा के हैं, जो उस समय उस रूप परिणमने की योग्यता उसमें भी पड़ी है, तो वो रस रुधिर वगैरह वगैरह रूप परिणमित हो जाते हैं। ये सप्त धातु कल परसों बात आई थी, ये सप्त धातु की हुँ? देवों में ये सात धातु नहीं होती, उनके वैकृत शरीर है आहार वर्गणा से, परंतु वो थोड़े से और सूक्ष्म जाति के परमाणु। 65 पेज पर ये सारे स्थिर अस्थिर के उदय में हमने वो देखा था, स्थिर और अस्थिर नाम कर्म के उदय में क्या क्या होता है उसके। अरे अनंत अनंत होते उसमें भी, उसका पहले का कर्म शरीर ये लेके आया ना तेजस, तो परमाणु की यानी वो प्रदेश की एक एक परमाणु की सूक्ष्मता कितनी है, क्योंकि जीव कितना भी मिनिमम व्यापेगा तो भी वो घनांगुल का असंख्या का भाग होता है, वो सूक्ष्म निगोद लब्धि अपर्याप्त, तो उसके देह के अंदर भी कितनी अनंत अनंत परमाणु, और हर समय वो शरीर रूप हो रहे हैं, हर समय वहीं के कर्म भी ले रहे हैं और तेजस भी वहीं के ले रहे हैं, यानी उतने ही एक एक समय में तेजस के भी परमाणु ले रहे, कर्म के भी परमाणु ले रहे, शरीर के भी परमाणु ले रहे। आप कहेंगे इतने जीव है वहां पर, या इतने एक निगोद शरीर में तो अनंत जीव है, उनके अपने अपने कर्म और तेजस तो अलग अलग है, वो तो उनके वो तो जुदे लेंगे, औदारिक शरीर भले सबके लिए कॉमन है, तो उसकी सूक्ष्मता ख्याल में आती है। और केवली भगवान तो क्यों परमाणु की संख्या तक जानते कितने एक समय में लेता है, और उसमें भी वो योग का निमित्त होता है, उतने उतने परमाणु की संख्या भी जुदी जुदी लेंगे। यानी इस पर विचार करो सूक्ष्मता से, तो कितनी जो कहते हैं गहनता तक इसका अभ्यास है, अभ्यास यानी उनका ज्ञान ही है ना ऐसा। ये हमने स्थिर नाम कर्म और अस्थिर नाम कर्म के उदय में ये बातें देखी थी। हाँ, 63 पर 63 पेज पर देखा ये सब हमने देखे थे उसमें। अब आना अपने पेज पर, ये औदारिक शरीर नाम कर्म का उन्होंने डेफिनेशन बताएं।
साधारण शरीर वाले सभी जीव है, एक शरीर है जिससे भी वाला है, सभी का योग समान होगा।
साधारण शरीर में एक शरीर में अनंत जीव है, वो सभी जीव का योग अलग अलग
जुदा जुदा होगा ना। देखो जिस कर्म के ये हो गए ना, अभी जिस कर्म के उदय से आहार वर्गणा के स्कंद अभी वैक्रिय शरीर रूप परिणमित होने वाले, अभी औदारिक शरीर के लिए सात धातु का वर्णन किया उस रूप परिणम से, अब वैक्रिय शरीर रूप परिणमने वाले तो वैक्रिय शरीर का थोड़ा वर्णन करेंगे। अणिमा आदि गुणों से उपलक्षित, यानी ये शरीर कैसा है, अणिमा आदि गुणों गुण उसके लक्षण है, ये उसके लक्षण है। अणिमा यानी एकदम छोटा धारण करे, गरिमा बड़ा धारण करते, लघु यानी हल्का भारी छोटा बड़ा, ऐसे उसके जो आठ उसकी विशेषताएं बताते हैं ना वैक्रिय शरीर के, आदि गुणों से उपलक्षित शुभा शुभात्मक वैक्रिय शरीर के स्वरूप से परिणत होते हैं। वैक्रिय शरीर कहा तो देवों का अणिमा आदि वो शुभ हुआ, और अशुभ नारकियों का तो उसमें वो नहीं लेना सारा। उस कर्म की वैक्रिय शरीर यह संज्ञा, उस कर्म को वैक्रिय शरीर नाम कर्म कहेंगे। वो भी सूक्ष्म है, वैक्रिय से भी सूक्ष्म है, वो नहीं दिखेगा आंखों से। हाँ, जिस कर्म के उदय से वैक्रिय, उसमें भी वो जैसा रूप धारण करेंगे वैसे बिना दिखे भी वैक्रिय शरीर होता है, और वो कैसा सूक्ष्म है, हम देखा दिखाते नहीं, वो दीवार में से चला जाए, पर्वत में से चला जाए, आहारक शरीर तो उससे भी सूक्ष्म है। तो जिस कर्म के उदय से ये वैक्रिय शरीर हो गया, आहार वर्गणा के स्कंद आहार शरीर के स्वरूप से परिणत होते हैं। ये मुनिराज के होता है ना, आहारक शरीर बनाते हैं मस्तक से एक हाथ प्रमाण सफेद, सप्त धातु रहित होता है वो। वैक्रिय शरीर में भी सप्त धातु नहीं है और आहारक शरीर में भी नहीं है, वो तो वैक्रिय शरीर से भी और सूक्ष्म है। उस कर्म के आहार शरीर यह संज्ञा, आहारक शरीर कहते हैं उसको, आहार लिखा यहाँ पर। जिस कर्म के उदय से तेजस वर्गणा के स्कंद, ये सब उसी प्रदेशों में रहने वाले वो लेना, निस्सरण अनिस्सरणात्मक और प्रशस्त अप्रशस्तात्मक तेजस शरीर के स्वरूप से परिणत होते हैं, वह कारण में कार्य के उपचार से तेजस शरीर नाम कर्म कहलाता है। ये तेजस शरीर कैसा है, निस्सरण और अनिस्सरण, निस्सरण बाहर निकलते हैं ना वो शुभ तेजस अशुभ तेजस, इसलिए प्रशस्त अप्रशस्त भी बता दिया। हाँ, उष्णता और तेज इसके कारण होता है, यहाँ उसके हाँ निस्सरण ने बाहर निकलना, जैसे तेजस समुद्घात होता है ना, और ऐसे भी अन्य समुद्घातों में जीव के प्रदेशों के साथ वो बना रहता है, परंतु केवल वो तेजस शरीर बाहर निकलता है, मूल शरीर तो यहाँ है, और उसका सवाल ही नहीं है। सप्त धातु तो औदारिक में होते हैं, हाथ कहाँ होता है तेजस, हाथ से निकलता है वो उसका वो, उसके बिलाव के आकार का वो तेजस शरीर निकलता है, वो तेजस वर्गना से बना है ना। हाँ, वो जैसे आहारक आहार वर्णा से वो बनता है, वैसे ये निस्सरण वाला जो निकलता है रेगुलर, तो जितना जीव के प्रदेश है वहीं पर वो तेजस शरीर तो बना है, ये बाहर निकलने वाला जो तेजस शरीर और एक्स्ट्रा बन जाता है उसकी बात है। वैक्रिक नहीं, उसको तेजस समुद्घात कहते हैं, उसका नाम अलग है। यहाँ तो केवल शरीर नाम कर्म इतने कॉमन बताया था, इसमें पांचों की बात अलग अलग बताई। तो हमने जो द्वीपायन की स्टोरी पढ़ते हैं ना, हम देखते तो उनके बाएं स्कंध में से नहीं, वो तो बाहु में से वो पुतला निकला था तेजस का, वो सिंदूर के रंग का ऐसा, बिलाड़ी के बिलाव के आकार का ऐसा, फिर उसका वर्णन आता है, वो सब जला के फिर मूल शरीर में प्रवेश करता है और वो भी भस्म हो जाता है, वो भी भस्म हो जाता है। ये हो गया शुभ तेजस, राइट हैंड में से, राइट आर्म में से निकलता है, और वो कोई महामारी है, अन्य कोई बड़ा संकट है तो उसको निवारण करके वापस आ जाता है। वो नीले रंग का कुछ बताते हैं, सफेद रंग का,
सफेद
जिस कर्म का उदय कुष्मांड फल के वेंट के समान सर्व कर्मों का आश्रयभूत हो, उस कर्म की कार्मण शरीर यह संज्ञा है। ये कुष्मांड फल के वेंट के समान क्या, मुझे नहीं समझा। कुष्मांड है ना, भोपड़ा, अच्छा तो उसमें कैसे समझना, हाँ अच्छा,
क्या बताया उन्होंने,
यानी कुष्मांड फल है वो पम्पकिन है ना, हाँ उसका जो आधार है वहाँ से ये फल निकलता है, ऐसे सभी का, सभी कर्मों का आश्रयभूत है।
इस
अच्छा यहाँ यही कहते हैं, कार्मान शरीर नाम कर कर्म के उदय में आठों ही कर्मों का बंध होता है, यानी कार्मान वर्गणा कर्म रूप हो जाती है। क्यों, कार्मान शरीर नाम कर्म का उदय है, जैसे औदारिक शरीर नाम कर्म के उदय में औदारिक जाति के आहार वर्गणा का ग्रहण होकर उसको औदारिक शरीर रूप परिणमाया जाता है, कार्मान शरीर नाम कर्म के उदय में कार्मान वर्गणा ग्रहण की जाती उसको कर्म रूप परिणमाया जाता है, ये आठों ही कर्मों का वो तो कारण।
तो क्या ये आर शरीर आरक शरीर बनाता है तो पहले जीव के प्रदेश पहले गए और पीछे शरीर
ना, 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 ना। पहले
शरीर की रचना होती है तो वो तो बाहर होती है कि अंदर ही हो जाती है,
अंदर नहीं मस्तक से ही निकलता है ना वो,
पर तो पहले क्योंकि हमने देखा आरक मिश्र का योग पीछे आरक का योग तो वहाँ पे शरीर की रचना होती है, तो पहले जीव के प्रदेश फैलेंगे और पीछे शरीर की रचना,
एक समान एक के साथ हो जाएगा ना, पहले प्रदेश फैलेंगे बाद में लेंगे ऐसे थोड़ी होता है, एक ही समय में, क्योंकि उसके
छठा गुण स्थान का काल भी बहुत
कम ही काल होता है ना, वो उसी में वो औदारिक मिश्र भी आरक का योग भी उसमें मनोयोग वचन योग भी पलटेगा, तो उसका यथायोग छोटा ही अंतर्मुख होगा। 70 पेज आज अभी शरीर नाम कर्म बात देखी हमने, अब बंधन नाम कर्म, अब जो उद्गत स्कंध तो परिणमित होते हैं, अभी उसका
बंधन,
एक जो बंधन हो जाता है ना एक दूसरे के साथ, नहीं तो ऐसे जो हमारे लड्डू बनाने के लिए रवा लेते हैं ना, खाली रवे का बनाओ लड्डू नहीं बनता है। तो क्या करना पड़ता है, उसमें घी डालो, सेको, शक्कर डालो, उसका पाक डालो, क्या क्या करो, तो चिकनाई होती है ना उसमें, एक दूसरे से बनते हैं, इस तरह से कह रहे हैं। जम तम शरीर बंधन नाम कम्मम तम पंचविहम, ओरालीय शरीर बंधन नामम, वेयुवीय शरीर बंधन नामम, जो पांच हमने शरीर देखे उसी नाम के बंधन भी है, आहार शरीर बंधन नामम, तेजा शरीर बंधन नामम, कम्मय शरीर बंधन नामम चेदि। जो शरीर बंधन नाम कर्म है वह पांच प्रकार का है, औदारिक शरीर रह गया बंधन नाम कर्म, वैक्रियक शरीर बंधन नाम कर्म, आहारक शरीर बंधन नाम कर्म, तेजस शरीर बंधन नाम कर्म, ब के ऊपर बिंदी दो, और कार्मण शरीर बंधन नाम कर्म। जिस कर्म के उदय से औदारिक शरीर के परमाणु परस्पर बंध को प्राप्त होते हैं, उसे औदारिक शरीर बंधन नाम कर्म कहते हैं। ये परमाणु जो आए वो एक दूसरे के साथ बंध को प्राप्त होते हैं, ये उसके बंधन का कार्य है। इस प्रकार शेष शरीर संबंधी बंधनों का भी अर्थ कहना चाहिए। वो तेजस के साथ बंधेंगे, वो सब दूसरे के साथ। जम तम शरीर संघाद नाम कम्मम तम पंचविहम ओरालीय शरीर संघाद नामम वेयुव्य शरीर संघाद नामम आहार शरीर संघाद नामम तेया शरीर संघाद नामम कम्मय शरीर संघाद नामम चेदि। जो शरीर संघात नाम कर्म है वह पांच प्रकार का है। औदारिक शरीर संघात नाम कर्म, वैक्रियक शरीर संघात नाम कर्म, आहारक शरीर संघात नाम कर्म, तेजस शरीर संघात नाम कर्म, ना बराबर करो, और कारमान शरीर संघात नाम कर्म। देखो ये शरीर नाम कर्म है, उसी नाम के बंधन नाम कर्म भी होते हैं, उसी नाम के संघात नाम कर्म भी होते। जब हम 148 अलग अलग गिनते प्रकृतियां, तो शरीर नाम कर्म पांच, बंधन पांच और संघात पांच। और अब कभी हम बंधने वाली 120 या टोटल 122 गिनते हैं, तो उसमें ये सबको मिलकर शरीर में ही, यानी वो बंधन और संघात अलग नहीं कहते, ये 10 उसी में समा देते। शरीर नाम कर्म इतना ही कहते, शरीर और अंगोपांग इतना ही हम देखते, बंधन और संघात को अलग नहीं भी गिनते। ये गिनने की तरीका अलग अलग होता है। जब डिटेल में 148 गिनने हैं, तो हमने जो वर्ण रस गंध स्पर्श देखे
उसके 20 थे,
तो उसके 20 20 भेद करते, उसके बदले चार ही लेंगे, क्योंकि वर्ण पांच प्रकार का है, रस इसने गंध दो प्रकार का है, उसके भेद किए बिना केवल स्पर्श रस गंध वर्ण इतना कहेंगे, तो चार हो गए। 20 के बदले चार, वो 16 कम हो गई और यहाँ 10 कम हो गए, 26 कम हो गए, 148 में से 26 गए तो 122 रह गए। उसमें सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व जो है वो तो हाँ वो बंधने वाली नहीं है, सत्व वाली है, तो इसलिए 120 ही बंधने वाली गिनते। यानी ऐसा हिसाब क्यों किया वो उसके बता दिया, नहीं तो आप कहीं 120 का हिसाब आता है, कहीं 148 का आता है, कैसे समझना? तो इस तरह समझना। देखो शरीर संघात नाम कर्म हमने पढ़ा ना, शरीर भाव को प्राप्त तथा बंधन नाम कर्म के उदय से एक बंधन बद्ध। देखो शरीर भाव को प्राप्त हुआ यानी शरीर रूप परिणमित हुए शरीर नाम कर्म से, एक बंधन यानी एक उसका बंधन बन गया सबका मिलकर, वो बंधन नाम कर्म से हुआ। ऐसे औदारिक शरीर के स्कंधों का जिस कर्म के उदय से छिद्र राहित्य होता है, यानी छिद्र रहित बना होता है, छिद्र रहित उसका वो बंधन जो एक बंधन हुआ, तो उसमें कोई छिद्र नहीं बन रहा है, यानी कोई बीच में गैप नहीं हो रही है, वह औदारिक शरीर संघात नाम कर्म है। इसी प्रकार शेष शरीर संघातों का भी अर्थ कहना चाहिए। हमने कर्मकांड में तो ये भी देखा था कि औदारिक का औदारिक के साथ होता है, औदारिक का तेजस के साथ होता है, औदारिक का कारमांड के साथ होता है, उसके कॉम्बिनेशन बहुत सारे देखे थे। वो भी एक दूसरे के, अभी एक ही जीव के साथ वो बंधे है ना, तो उनका भी आपस में
बंद
यथा योग्य उसके कॉम्बिनेशन बंद होते हैं, फिर भी है जुदे जुदे सा। अभी संस्थान नाम कर्म, संस्थान ने आकार, जम तम शरीर संठान नाम कम्मम, कमम हुआ है, कम्मम डबल म चाहिए, पहली बार नहीं सीखा था। तम छव्यहम समचौर शरीर संठान नामम नगोह परिमंडल शरीर संठान नामम साधिय शरीर संठान नामम खुज शरीर संठान नामम, ये स के ऊपर चांद लगा दिया, वामन शरीर संठान नामम कुंड शरीर संठान नामम चेदी। जो शरीर संस्थान नाम कर्म है वह छह प्रकार का है। देखो ये सब नाम हमको थोड़े ख्याल में लेंगे, क्योंकि आगे जो ये चूली का क्यों लिखी गई है? पहले तो ये सब नाम बता रहे हैं। सम्यक तो होता है तो कौन से कर्म प्रकृति बंधने से रुक जाएगी, वो सब बातें आगे आने वाली है। तो इसमें से शुभ कौन से, अशुभ कौन से, अधिक अशुभ कौन से वगैरह वगैरह जो तरतमता पता होगी तो वो ख्याल में आता है कि मिथ्यात्व से समय तो प्राप्त किया तो कितनी कितनी कर्म प्रकृतियां बंधना रुक जाती। अभी इसमें से खाली वो समचतुरस्थ संस्थान बंधेगा, बाकी कुछ बंधेगी नहीं। तो कौन सी पोजीशन में कौन से की बंध विच्छित्ति होती है सब बात आगे आने वाला है। प्रायोगिक लब्धि जो होती है ना उस परिणाम में ही कितने प्रकृतियां क्रम से बंधना रुक जाती। पहले सबसे वो 6 नंबर वाला हुंडक संस्थान वो बंधना रुक जाएगा, फिर 5वां वाला, फिर वो उसके सारे नंबर बताएंगे वहां पर। इसलिए ये नाम अभी पहले बता रहे हैं, ये 6 नाम हम देख रहे हैं। समचतुरस्र शरीर संस्थान नाम कर्म, न्यग्रोध परिमंडल शरीर संस्थान नाम कर्म, स्वाति शरीर संस्थान नाम कर्म, कुब्ज शरीर ना संस्थान नाम कर्म, कुब्ज क भी कहते हैं, कुब्ज भी कहते हैं, वामन शरीर संस्थान नाम कर्म और हुंड या हुंडक शरीर संस्थान नाम कर्म। अभी किसको क्या कहना है? समान चतुरस्र अर्थात समविभक्त को समचतुरस्र कहते हैं। समविभक्त हम कहेंगे प्रोपोर्शन बॉडी। कभी कभी कोई ना ऊपर ज्यादा ऊंचे होते हैं, पैर ठेंगने होते हैं, कोई नीचे लंबे दिखते हैं, ऊपर ठेंगना होता है, ऐसा जो कुछ अलग अलग। अभी जो जो जिस पर्याय वाला जीव, मनुष्य के शेप अलग हो गए, तीरंचों के अलग हो गए, देवों के अलग है, नारकियों के अलग है। नारकियों के तो हुंडक संस्थान होता है, देवों के समय चतुरस्त होता है। ये मनुष्य तीरंचों में 6 वैरायटी होती है। तो कहते समान चतुरस्र अर्थात सम विभक्त को सम चतुरस्र कहते हैं। जिस कर्म के उदय से जीवों के सम चतुरस्र संस्थान होता है उस कर्म की सम चतुरस्र संस्थान यह संज्ञा उसका नाम है। हम देखते हैं ये ऐसा ही कोई शोक, अरे वैसा ही नाम कर्म का उदय है तो उसके वैसे उस जाति का शेप, उस जाति की बॉडी आकार पाया जाता। न्यग्रोध वट वृक्ष को कहते हैं, उसके परिमंडल के समान परिमंडल जिस शरीर का होता है उसे न्यग्रोध परिमंडल कहते हैं। परिमंडल यानी उसका जो घेरा जो होता है ना वट वृक्ष का, ऊपर ऐसा बड़ा है नीचे छोटा है, इस तरह से जो है न्यग्रोध परिमंडल। तो वटवृक्ष को कौन सा संस्थान है?
उसको संस्थान हुंडक संस्थान
वनस्पति एक ही दिनों के तो सारे हुंडक संस्थान है। यह न्यग्रोध ये वटवृक्ष का तो उदाहरण दिया जाता है। ये मनुष्य तीन इंचों में पंचेंद्रियों में ये संस्थान अलग अलग है तो उसके अपेक्षा बात है। ये खाली मनुष्यों पर नहीं लगाना, तीरंचों को भी उसमें आ जाते हैं। न्यग्रोध परिमंडल रूप ही जो शरीर संस्थान होता है वह न्यग्रोध परिमंडल अर्थात आयत वृत्त शरीर संस्थान नाम कर्म है। आयत वृत्त समझते हैं? आयताकार और फिर वृत्त ने गोलाकार में आयत वृत्त। स्वाति नाम वल्मीक या शालमली वृक्ष का है, उसके आकार के समान आकार जिस शरीर का है वह स्वाति शरीर संस्थान है। अर्थात यह शरीर नाभि से नीचे विशाल और ऊपर सूक्ष्म या हीन होता है। कुछ वृक्ष नीचे ऐसे बड़े और ऊपर कम होते हैं, इस तरह से। हम कोई कहते हैं ना वो तो कमर के नीचे ऐसे बड़े और ऊपर एकदम दुबले ऐसा, इस ये अलग अलग टाइप के अभी जो कुछ समझ लेना आप। कुबड़े शरीर को कुब्ज शरीर कहते हैं, ये हंचबैक होता है ना उसको कुबड़ा कहते हैं। इधर उसके समान संस्थान जिस शरीर का होता है वह कुब्ज शरीर संस्थान है। जिस कर्म के उदय से शाखाओं के दीर्घता और मध्य भाग के ह्रस्वता होती है उसकी कुब्ज शरीर संस्थान यह संज्ञा है। यानी शाखा है नहीं, वो भी पेड़ की शाखा तो नहीं समझना, अन्य जो हवाई और हाथ पैर वगैरह समझना, उसमें ये लंबे है और ये शरीर छोटा है। मुझे वो एक्रोमेगाली याद है, ऐसा होगा शायद। यानी वो तो कद छोटा होता है मगर हाथ पैर लंबे, मुंह भी बड़ा लेते हैं बड़े आदमी की जैसे। हाँ, बहुने शरीर को वामन शरीर कहते हैं, यानी ठिंगना जिसको कहेंगे द्वार। वामन शरीर के संस्थान के समान संस्थान जिससे होता है वह वामन शरीर संस्थान है। ये नाम कर्म के भेद चल रहे हैं। जिस कर्म के उदय से शाखाओं के ह्रस्वता और शरीर के दीर्घता होती है वह वामन शरीर संस्थान नाम कर्म है। तो हमने देखे ये ड्वार्फ वगैरह देखते हैं तो ट्रंक बराबर है और हाथ पैर ऐसे छोटे छोटे होते हैं उनके। ये अलग अलग टाइप के नाम कर्म के उदय में वैसा शरीर मिलता है। विषम अर्थात समानता रहित अनेक आकार वाले पाषाणों से भरी हुई मशक के समान सर्व ओर से विषम आकार को हुंड कहते हैं। हुंड के शरीर को हुंड शरीर कहते हैं। यानी समानता रहित ऐसा जो कि आकार होते हैं उसके संस्थान के समान संस्थान जिससे होता है उसका नाम हुंड शरीर संस्थान है। जिस कर्म के उदय से पूर्वोक्त पांच संस्थानों से व्यतिरिक्त 31 भेद भिन्न अन्य संस्थान उत्पन्न होता है वह शरीर हुंड संस्थान संज्ञा वाला है ऐसा जानना चाहिए। यानी कॉम्बिनेशन बताए उसके, ये पांच तो मूल बताए, अब उसके कॉम्बिनेशन रूप जो कुछ है वो सारे हुंड संस्थान हो गए। देखो विशेषार्थ में उसको बता रहे हैं। आगे स्थान समुत्कीर्तन चूलिका के, ये प्रकृति समुत्कीर्तन चल रहा है, प्रकृतियों के नाम बता रहे हैं। अभी स्थान यानी एक साथ कितने प्रकृतियों का जो कुछ होता है उसको स्थान कहेंगे। उस चूलिका के सूत्र 68 की टीका में धवलाकार ने कहा है कि सौवावयेषु नियद सरूव पंच संथानेषु वे तिन्नी चदु पंच संथानानं संजोगेनम। यानी दो का संयोग, तीन का संयोग, चार का संयोग, इस तरह से पांच का संयोग, संयोगेन हुंड संथानम अनेय भेद भिन्नम उपपद्यति। यानी दो का कॉम्बिनेशन, तीन का कॉम्बिनेशन, चार का, पांच का, उसके अनेक भेद उत्पन्न होते हैं। अर्थात सर्व अवयवों में नियत स्वरूप वाले पांच संस्थानों में से दो तीन चार व पांच संस्थानों के संयोग से हुंड संस्थान अनेक भेद भिन्न उत्पन्न होता है। ये उत्पन्न करो उत्पत्र हुआ। इस निर्देश के आधार से हुंड संस्थान को ध्रुव मानकर हुंड संस्थान के द्विसंयोगी आदि भंग कुल मिलकर 31 उत्पन्न होते हैं जो इस प्रकार है। यानी एक हुंड संस्थान को एक कॉमन रखा और फिर इसके दो का तीन का यानी हुंड के साथ और अन्य और अन्य। तो द्विसंयोगी भंग उसके पांच हो गए, टोटल छह है ना। हुंड को कॉमन रखो
और बाकी के पांच के
दो और फिर यानी वो छठा नंबर है, पहले के साथ कॉम्बिनेशन, छठा और पहला, छठा और दूसरा, छठा और तीसरा, छठा और चौथा, छठा और पांचवा, पांच भेद हो गए। तो द्विसंयोगी भंग पांच होते हैं। त्रिसंयोगी भंग पहले उन्होंने निकालने का तरीका बताया था, वो नीचे करके बताया उन्होंने। ये द्विसंयोगी त्रिसंयोगी कैसे निकालना, तो पांच के साथ करना है तो पहले पांच चार तीन दो एक लिखो, उसके नीचे एक दो तीन चार पांच लिखो, तो हमारे द्विसंयोगी भंग पांच होते हैं, क्योंकि उसको ध्रुव रखा उसके साथ और एक मिला। फिर
त्रिसंयोगी
भंग इस तरह से, इसका इसका गुणाकार उसको डिवाइडेड बाय पांच चौक बीस डिवाइडेड बाय दो, दस हो जाएगी। चतुस्संयोगी भंग यानी तीन के साथ भंग हो जाएंगे ना, तो यहाँ तीन दुनी ये तीन गया है तीन गया दो, ये भी दस हो जाएंगे। पंचसंयोगी भंग यानी यहाँ पर इतना लेना, चार तीन दो गए पांच हो जाएंगे। और षट्संयोगी भंग छह संयोगी भंग ये सब लेना, तो दो तीन चार पांच दो तीन चार पांच सब गए यानी एक ही होगा। ये छह में लगाना है परंतु हमने एक तो फिक्स रखा है इसलिए, क्योंकि वो एक छठे के साथ कॉम्बिनेशन लेने हैं। ख्याल में बस, तो यहाँ दिखा है सब किस तरह से होते, द्विसंयोगी पांच हो गए, त्रिसंयोगी दस हो गए, चतुस्संयोगी भी दस, पंचसंयोगी पांच, छह संयोगी एक, तो दादा बीस तीस और एक इकतीस हो जाएगी। इस प्रकार हुंड संस्थान के समस्त संयोगी भंग इकतीस होते हैं, और अकेला केवल हुंड संस्थान रखेंगे तो वो तो अलग ही होगा, बत्तीसवा होगा। अब आते हैं नेक्स्ट सूत्र, जम तम शरीर अंगोवंग नाम कम्मम। अभी तक तो शरीर देखा, बंधन देखा, संघात देखा, और फिर अभी अभी देखे वो संस्थान देखे, अब अंगोपांग देखना है। जम तम शरीर अंगोवंग नाम कम्मम तम तिविहम ओरालीय शरीर अंगोवंग नामम वेयुव्य शरीर अंगोवंग नामम आहार शरीर अंगोवंग नामम चेदी। मनीषा बेन, शरीर नाम कर्म कितने प्रकार के देखे थे? पांच। और अंगोपांग अभी कितने देखे? देखो हिंदी में पढ़ती हूँ, हिंदी में पढ़ती हूँ, आपको ख्याल में आएगा। अभी जो सूत्र पढ़ा उस पर मैं पूछ रही हूँ, जो शरीर अंगोपांग नाम कर्म है वह तीन प्रकार का है। औदारिक शरीर अंगोपांग नाम कर्म, ये अ के ऊपर बिंदी लगाना सर्वत्र। वैक्रियक शरीर अंगोपांग नाम कर्म और आहारक शरीर अंगोपांग नाम कर्म, कितने बताए? तीन। कौन से शरीर में अंगोपांग नहीं होगा ये पढ़ के बताओ। शरीर पांच कौन से देखे? हाँ, तेजस शरीर में कोई उसके हाथ पैर नहीं होते, भले उसका जो जीव जैसा है उसके वैसा शोक रहेगा, उसके अपने कुछ अंग और उपांग नहीं है उसके। कार्मण शरीर में भी कोई अंग और उपांग नहीं है, तो ये औदारिक वैक्रियक और आहारक शरीर में पाए जाएंगे। देखो अभी उसका 73 पेज पर आना। जिस कर्म के उदय से औदारिक शरीर के अंग उपांग और प्रत्यंग और उसके छोटे छोटे अवयव उत्पन्न होते हैं वह औदारिक शरीर अंगोपांग नाम कर्म है। इसी प्रकार शेष दो अर्थात वैक्रिक और आहारक शरीर संबंधी अंगोपांगों का भी अर्थ कहना चाहिए। हाँ, तेजस और कारमान शरीर के अंगोपांग नहीं होते, वैक्रिक नहीं, तेजस और कारमान, उनके हाथ पांव गला आदि अवयवों का अभाव है। समझ में आई बात? तीन ही शरीरों में उसके अवयव होते हैं। कारमान तो अखा एक स्कंद है, उसके कोई हाथ पैर कारमान शरीर के नहीं कहलाएंगे या औदारिक शरीर के कहलाएंगे। तो मेरा ये प्रश्न है, सभी तिर्यंचों का अंगोपांग नाम कर्म का उदय होगा कि नहीं होगा? शांति रखो, किसको नहीं होगा? एक इंद्रिय को अंगोपांग नहीं होगा, बहुत अच्छा, क्योंकि एक तो उसके आकार बहुत छोटा होता है। तो वनस्पति के इतने शाखा पत्ते फूल होते वो एक जीव नहीं है, उसमें असंख्यात जीव है। वनस्पति में भी कोई अंगोपांग नहीं होता, उसी से हम कह सकते हैं, नहीं तो कहेंगे ये शाखा है, ये उपशाखा है, उसके पत्ते है, फूल है, ये उसके अवयव है नहीं, उसके अलग अलग नहीं, वो अलग अलग जीवों के शरीर एक साथ जुड़े हुए स्कंद रूप से बने। आगे अभी सहनन की बात करेंगे। सहनन का अर्थ क्या देखा था मैं, हड्डी और उसका बंधन और उसके जो जॉइंट्स
सॉलिड,
उसकी पोजीशन वो कैसे है, कितने मजबूत है, उसकी बात बताई थी। जम तम शरीर संगठन नामो तम छविहम, जैसे हमने संस्थान छह प्रकार के देखे थे वैसे सहनन भी छह प्रकार के। अभी संस्थान तो देवनारकी को भी थे, संस्थान तो सभी जीवों को, एक केंद्रीय सहित सबको संस्थान ने आकार, सहनन मात्र मनुष्य तीरियंचों को औदारिक शरीर में, एक इंद्रियों को छोड़कर उनके सहनन होगा। हाँ, द्विंद्रिय से लेकर सबको संगनन है, देव और नारकी को नहीं है, आहारक शरीर में नहीं है क्योंकि उसमें हड्डी नहीं होती। अब देखें, जम तम शरीर संगणन नामम तम छव्यहम, वज्जरिस वैर नारायण शरीर संगणन नामम, वज्र नारायण शरीर संगणन नामम, नारायण शरीर संगणन नामम, अद्ध नारायण शरीर संगणन नामम, खिलिय शरीर संगणन नामम, असंपत्त सेवठ शरीर संगणन नामम चेरी। अब हिंदी में पढ़ते हैं, जो शरीर सहनन नाम कर्म है वह छह प्रकार का है, वज्र ऋषभ वज्र नाराच शरीर सहनन नाम कर्म, जिसको हम वज्र ऋषभ नाराच भी कहते हैं, परंतु वो वृषभ वज्र का ही हड्डी है, वज्र का ही वृषभ है ने वेष्टन है और वज्र की वो संधियां हैं, इसलिए वज्र शब्द दो बार लिया उन्होंने। वज्र नाराच शरीर सहनन नाम कर्म, यानी वज्र की हड्डी है मगर वो नाराच वज्र का नहीं, उनका नाराच शरीर सहनन नाम कर्म, अर्ध नाराच शरीर सहनन नाम कर्म, कीलक शरीर सहनन नाम कर्म और असंप्राप्ता स्रूपाटिका, यानी असंप्राप्त अस्रूपाटिका, ऐसा उसका अर्थ होता है शरीर सहनन नाम कर्म। अब उसको बताएंगे उसका स्वरूप कैसा कैसा है। हड्डियों के संचय को सहनन कहते हैं, वेष्टन को वृषभ कहते हैं, वेष्टन कहते हैं हड्डी जो लपेटी हुई होती है मेम्ब्रेन, पेरिओस्टियम कहते हैं उसको मेडिकल में। वज्र के समान अभेद्य होने से वज्र ऋषभ कहलाता है, वज्र के समान जो नाराच है वह वज्र नाराच कहलाता है। ये दोनों ही अर्थात वज्र ऋषभ और वज्र नाराच जिस वज्र शरीर सहनन में होते हैं वह वज्र ऋषभ वज्र नाराच शरीर सहनन है, उसको वज्र ऋषभ नाराच भी कहते हैं। वज्र शब्द दोनों के लिए कॉमन है, यानी हड्डियां वज्र में वेष्टन से वेष्टित है और वो उनके ज्वाइंट भी वज्र में है, उसको वज्र ऋषभ वज्र नाराज कहेंगे। जिस कर्म के उदय से वज्र में हड्डियां वज्र में वेष्टन से वेष्टित और वज्र में नाराज से कीलित होती है वह वज्र ऋषभ वज्र नाराज शरीर सहनन है। हड्डी भी वज्र की, वेष्टन भी वज्र का और वज्र में नाराज होता है, ऐसा अर्थ कहा गया। यह पूर्वोक्त अस्थिबंध ही, अस्थिबंध हड्डियों का बंध, जिस कर्म के उदय से वज्र ऋषभ से रहित होता है वह कर्म वज्र नाराज शरीर सहनन है। क्या कहना चाहते हैं, केवल उसके वृषभ जने वेष्टन है वो वज्र के नहीं है, वो वृषभ नाम निकाल दो, वज्र नाराज कहेंगे, इस नाम से कहा जाता है। जिस कर्म के उदय से वज्र विशेषण से रहित नाराच से कीलित हड्डियों की संध्या होती है वह नाराच शरीर सहनन नाम कर्म है। अब वो वज्र की नहीं है, ऑर्डिनरी है जॉइंट्स। जिस कर्म के उदय से हाड़ों की संधियां नाराच से आधी बिंधी हुई होती है, विधि ने बिंधी, वह अर्ध नाराच शरीर सहनन नाम कर्म है। जिस कर्म के उदय से वज्र रहित हड्डियां और कीले होती है वह कीलक शरीर सहनन नाम कर्म है। यानी वो जॉइंट्स जो है वो कीलों सहित होते हैं। जिस कर्म के उदय से सरीसृप अर्थात सर्प की हड्डियों के समान परस्पर में असंप्राप्त और शिराबद्ध हड्डियां होती है वह असंप्राप्ता श्रुपाटिका शरीर सहनन नाम कर्म है। यानी वो जो जॉइंट्स है देखो जैसे हम फॉर एग्जांपल बताते आपको, ये एल्बो जॉइंट है ना, वो कैसे दो हड्डी है परंतु एक दूसरे में कुछ घूमती हुई है। अभी ये सारे असंप्राप्त श्रुपाटिका ही समझना, पर समझाने के लिए ये जो उंगलियां है जो है हड्डियां या जो नी जॉइंट है वो कैसा है, ये जुदी जुदी हड्डियां हैं और वो स्नायुओं से टेंडन से वो
जुड़ी हुई है।
उसमें कोई हड्डी से हड्डी जुड़ी नहीं है उसके अंदर, ख्याल में आती है बात। ये हमारे सारे तो दो हड्डियां तो मसल से ही जॉइंट है, वैसे उनके कैसे किले होते थे उसके अंदर, वो भी वज्र के होते थे। ये डिसलोकेशन कुछ नहीं होता होगा, अरे ना अस्थिभंग होता होगा उनका वज्र हड्डी के डॉक्टर का कोई काम ही नहीं था अभी। हाँ बोलो। नाराज का अर्थ होता है जॉइंट। देखो ये बात पहले आई थी, हमको बताते आपको, सहनन की बात आई थी ना पहले, क्या पहले हमने इतने नाम देखे ना एट ए टाइम। पेज नंबर निकालो, संस्थान के बाद सहनन है ना,
53
संस्थान है वहाँ पर
और सहनन
चल रहे हैं अपना। वही मैंने बोला कि मैंने 55 तक 57 तक मैं आई, संस्थान नाम कर्म विहार गति पहले लिया, सहनन कहाँ लिया, उसके पहले लिया क्या सहनन, सहनन 54 पर है। देखो नीचे से देखो, शंका के ऊपर का पैराग्राफ है ना, नीचे से तीसरा, उसमें नीचे से तीसरी लाइन, जिस कर्म के उदय से मिला शोभा 54 पेज 54 शरीर में हड्डी और उसकी संधियों अर्थात संयोग स्थानों की निष्पत्ति होती है। हड्डियां और उनके जॉइंट्स, संधि, ये हम कहते हैं संधिवात, संधिवात यानी क्या,
जॉइंट में
जो तकलीफें होती है संधि है ना जॉइंट, तो यहाँ उसको नाराज कह दिया, नाराज है ना जॉइंट्स। नाराज है ना उसके, वो उसको कील होगी शायद, कील मत, हाँ
कील,
नाराज का अर्थ कील, नाराज से कीलित होते हैं। ऊपर पता है नाराज से कीलित हड्डियों की संधियां,
नाराज इज जॉइंट
है, नहीं नहीं नाराज इज जॉइंट नहीं, नाराज इज जॉइंट के अंदर वो खिला
रहता है। हाँ।
उसको कील कहते हैं, हम खिला कहते हैं। नाराज से कीलित हड्डियों की संधियां, नाराज किसके लिए के वो जॉइंट में वो खिले से वो उसमें जॉइंट में रहता है उसको नाराज के लिए। दूसरी बात बताए ना हड्डियों की संधियां नाराज से आधी बिंदी हुई है यानी आधे में ही वो जो खिला होगा और आधे में नहीं होगा वो अर्ध नाराज का
हम लोग भी नहीं होता है ना
नहीं वो तो वो संप्राप्त सुपाटी का
और
छठा ही है
छठा संप्राप्त सुपाटी
अभी इसमें जो कोई हो गए इस काल में भी तीन सहनन नीचे के बताए हैं
पर होगा
अभी कोई हो गए ना ये वो भी हाँ उसमें भी ना कीलित में भी देखा ना वज्र रहित हड्डियाँ और कीले होती है वो कीलक शरीर सहने नाम है वज्र रहित है वो ऑर्डिनरी है उसमें भी कीले होगी और इसमें तो बिल्कुल कीले नहीं है हाँ पहले तो जो कीले थे वो वज्र के थे हड्डियां भी वज्र की थी फिर आधे में वो कील थी अभी पांचवे में कीलिक में तो वो कीले है हड्डियां है मगर वो सब ऑर्डिनरी है और छठे में तो हड्डियां सब सेपरेट है और सभी जॉइंट है किससे मसनायों से
दूसरे में बिठाए गए
आगे पढ़ते जम तम वर्ण नाम कम्मम देखो देखो अभी उंगली है ना आपकी यहाँ हड्डी अलग है यहाँ हड्डी अलग है और वो बाजू से स्नायुओं से जुड़ी हुई अभी नी ज्वाइंट देखो ना बड़ा है ना अपना नीचे का जुदा है ऊपर का जुदा है और ये बोन्स है इसमें इस तरह से ये बंद मुट्ठी करके आप लिगामेंट्स मसल्स क्योंकि ऊपर के मसल्स नीचे तक ऐसे
रूम में बिठाए रहता है
जैसे एल्बो जॉइंट है ये मसल्स जो है ऊपर के यहाँ तक ऐसे इसके कारण ये ऊपर नीचे हो सकते हैं स्नायु से वो बंधे हाँ स्नायु बंधे
नीचे के तीन सहनन सातवें गुण स्थान तक जा सकते हैं
हाँ नीचे के तीन सहनन से
सातवें
गुण स्थान तक का पुरुषार्थ
पीछे दो सहनन है वो पहले से
ऊपर के दो सहनन है
पहले से ग्यारहवें
ग्यारहवें
और
वज्रेश्वर नारायण वो तो मोक्ष का
एक से
चौदह वो सहनन है इसलिए मोक्ष का पुरुषार्थ होगा ऐसा नहीं क्योंकि हम तो देखते हैं के भोग भूमि में तो उत्कृष्ट पहला ही सहनन होता है पुरुषों को भी और स्त्री को भी वहां तो चौथे गुण स्थान तक का ही पुरुषार्थ होता है यानी सहनन है इसलिए वो होगा ऐसा भी नहीं है सातवें नरक में जाने वाले के भी वो वज्रेश्वर नारा सहनन वाला होता है तो जाता है अब वो तो तंदुर मत्स्य को भी जाता है तो उसके भी वैसा सहनन होगा कि नहीं होगा उसके बिना सातों नरक कैसे जाएगा?
होगा नहीं
बोले वो छोटी है उसकी साइज
उसके भी छोटे छोटे
जो कुछ होगा वो पोला
उसमें भी किले होंगे
हम जो इतने बड़े बड़े मत्स्य वगैरह देखते हैं अभी हम यहाँ जो देखते हैं उसमें भी ऐसे ही सहनन होगी ना कुछ या जो बहुत जिसको कहते हैं बलवान ऐसे प्राणी भी है और यहाँ मनुष्यों में भी होते हैं ना ये जो कोई मुष्टि योद्धा वगैरह होते हैं फाइटिंग करने वाले उनमें होगा कुछ ऐसा कितना मार खाते और देते दूसरे को हाँ, अभी आगे देखते हैं जम तम वर्ण नाम कम्मम तम पंचम जो हम देखते हैं ना विवर्ण गंध रस स्पर्श ये उसका ऑर्डर है हमेशा हम स्पर्श रस गंध वर्ण कहते हैं यहाँ वर्ण गंध रस स्पर्श कहेंगे क्योंकि नाम कर्म के जो बनता है ना नाम कर्म तो उसमें डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, उसके नियम हैं, जो जिस नाम जिस ऑर्डर से हम नाम लेते हैं कैसा होता है डिस्ट्रीब्यूशन।
क्या पूछा आपने?
कर्मों में जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जैसे एक समय में कर्म बंधा, समय प्रबोधानंदों का बंधा, तो उसमें या तो सात में या आठ में डिवीजन होती है। पहले तो
ज्ञाना वर्णा व्यवस्था होती
है। पहला सबसे बड़ा भाग किसको जाता है? बहुभाग वेदनीय को जाता है। वो स्थिति कितनी बनती है उसकी बात नहीं, परमाणु के नंबर ऑफ परमाणु कितने उसमें बनते हैं, तो बहुभाग तो वेदनीय को जाता है।
एक फिर में से वापस
एक का बहुभाग, पहले देखो पहले एक भाग अलग निकालो, फिर बचे हुए के आठ समान भाग करो। अभी आयु सहित की बात करें,
समान दे दो,
फिर जो बाकी था उसका एक बहुभाग वेदनीय को दो, बचे हुए का फिर बहुभाग मोहनीय को दो, मोहनीय को दो, फिर बचे हुए का ज्ञान और दर्शन अंतराय तीनों को समझो,
तीन में जाएगा।
हाँ। फिर जो बचा हुआ है वो उसका एक का दो भाग करके नाम और गोत्र में जाएंगे, और लास्ट जो बचा है वो आयु कर्म में चला गया। ऐसा उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब जो ज्ञानावरण में गया, जो वेदनीय में गया, तो जो बंधा है उसे में चला जाएगा। वेदनीय तो एक ही बंधेगी एट ए टाइम। मोहनीय में एट ए टाइम कितनी बनती है?
22।
मिथ्या तो 22 बंधेगी, तो उसमें डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? वो सर्वघाती देश, वो बहुत लंबा विस्तार है, वो मैं नहीं समझाऊंगी, क्योंकि कर्मकांड सामने होगा तो ही उसको समझाने में अच्छी बात है। हम यहाँ बात करें कि नाम कर्म का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है।
ये तो
ज्ञानावरण में कैसा होता है? शुरुआत में ज्यादा और फिर कम,
मति
ज्ञानावरण में ज्यादा, फिर श्रुत ज्ञानावरण, फिर अवधि, इस तरह से केवल ज्ञानावरण में सबसे।
इसमें भी ये नाम बताए उसी तरह जाएगा,
तो इसमें
गति जाती है, इससे जाएगा गति में ज्यादा जाएगा।
गति जाते के उल्टे क्रम से आता है?
नहीं, उल्टे क्रम से जाता है सभी नाम
नाम कर्म उल्टे क्रम से आता है। गति जाते शरीर बंधन संघात ऐसा जो है ना, अंत में जो है तो निर्माण वगैरह उसमें ज्यादा होगा, फिर ये सबसे कम गति में आएगा। तो ये उसके उस, हाँ बोलो।
अभी आप परमाणु की संख्या बोल रहे हैं?
परमाणु की संख्या, परमाणु की संख्या, जब बंटवारा होता है ना कर्मों का, तो उसमें किस तरह से बंटवारा होता है, परमाणुओं का बंटवारा कैसा होता है, उसकी बात।
पहली बार ही सुना
है। अच्छा अच्छा
होता है बंटवारा, इतना सुना था। हाँ।
देखो हम तो अभी हर एक उसमें भी जो सर्वघाती होते हैं ना, उसमें तो मिनिमम पॉसिबल परमाणु जाते हैं, और देशघाती में बहुत सारे जाते हैं, क्योंकि सबसे थोड़ा है फिर भी वो पूरा घात करने वाले हैं। ये बहुत इसमें जितना जाना उतने मजा है। हाँ? हाँ, सर्वज्ञ ने क्या क्या जाना है, एक समय में कितने बनते और कितने जीव बांध रहे, और हर में क्या क्या हो रहा है। हाँ? वो एट ए टाइम सब कुछ जानने में आ रहा है, अनादि अनंत। हमने या उन्होंने स्वयं अनादि से कितने कितने हर समय परमाणु लिए होंगे, उसकी संख्या उनके ज्ञान में है कि नहीं है, और अनंत जीव अनंत समय में अनादि से अनादि अनंत काल तक क्या क्या उसके हर एक की जीव की दशाएं, उसकी उसके परिणाम, कर्मों की बातें, अन्य पुद्गलों की जो कर्म रूप नहीं है। तो सर्वज्ञ की महिमा तभी आती है जब इतनी विशेषता को जानते हैं, नहीं तो हाँ सर्वज्ञ वितरागे बस। यानी कितने डिटेल में और कितने माइन्यूटली वो जानते हैं। हितोपदेशी बस
परमाणु का डिस्ट्रीब्यूशन
पर
फिर एक बार बताना।
हाँ जी, हाँ जी, परमाणु का डिस्ट्रीब्यूशन बंटवारा जिसको कहते हैं, ये कर्मकांड में जो है ना प्रकृति वगैरह उसके किस तरह से बंटवारा होता है उसकी बात आई थी उसके अंदर, होगी ना बहुत सारे हर जगह वही बात आती है। हाँ, उसमें वो बंटवारा वगैरह बात आई थी। तेरह से सत्रह फरवरी कर्मकांड के पहले दो अधिकार, पहले भाग के दो अधिकार, दो अधिकार भी 350 पेजेस हैं, तो 30 घंटों में पढ़ाएंगे। कुछ नया तो मैं निकलता ही है, हमको लगता है हमने पढ़ा है, हमने ये सुना है, ऐसा नहीं है। अभी भी जो जीवकांड के एक एक चैप्टर अलग अलग है, ज्ञान मार्गना, समय को मार्गना अलग ली, योग मार्गना, उसमें कितने ही कितना नया मिलता है, हमको ही पता है ना जो पढ़ाने वाले को कि कहाँ से बातें निकलती, क्योंकि ये जो हम बाकी अपना अभ्यास हुआ है वो सारा उसका आपस में वो रिलेशन कहीं ना कहीं आ जाता है। यानी कितनी बार हमने यहाँ सुना है मगर वो कुछ बात अलग ही निकलती वहाँ पर। योग मार्गणा कितनी अलग से ली है, बहुत नाते पुते में भी अच्छा हुआ। चलो अभी यहीं रुकेंगे, ये वर्ण की बात कल से ले लेंगे। जावानी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तकनम सदा देत हो।
नमो ओरियंतानम।